पद्य 40 का छिपा हुआ इतिहास, संख्या 12।
12 संख्या। सामान्यतः ये दावा किया जाता है कि यदि 5 व्यक्तियों ने एक ही मोटर वाहन दुर्घटना देखी हो तो वे 5ों साक्षी उसी एक विनाश के 5 भिन्न भिन्न वृत्तांत प्रस्तुत करेंगे। यद्यपि आज उस कालावधि में जब पवित्र आत्मा मानव जाति से वापस लिया जा रहा है, उन साक्षियों में निस्संदेह ऐसे लोग भी सम्मिलित होंगे जो अपनी व्यक्तिगत विश्व दृष्टि को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो देखा उसके विषय में कल्पना गढ़ेंगे और असत्य कहेंगे, और ऐसा करते हुए ये विश्वास करेंगे कि वे सद्गुण का आचरण कर रहे हैं। गुप्त इतिहास में भविष्यवाणी संबंधी सत्य की कई भिन्न धाराएं हैं जो उन्हीं घटनाओं के विभिन्न साक्षियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। परमेश्वर के वचन में कोई असत्य नहीं है, यद्यपि उन घटनाओं के विषय में मनुष्य की व्याख्या प्रायः त्रुटिपूर्ण होती है। तथापि इस इतिहास के बाइबिलीय साक्षी जब ठीक रीति से विभाजित किए जाते हैं तो सब के सब एक दूसरे के साथ सहमत होते हैं।
पतरस इतिहास में 144,000 का प्रतीक है और उसकी गवाही 18 जुलाई 2020 की निराशा से 31 दिसंबर 2023 की जागृति तक के एक प्रगतिशील इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है, फिर उस रूप में जिसमें वो बाह्य दर्शन की पहली परीक्षा में सम्मिलित है, तत्पश्चात आंतरिक दर्शन की दूसरी परीक्षा में, जिसके बाद नैशविल के अग्निगोले की लिटमस परीक्षा होगी, यहां तक कि अन्य जातियों के लिए ध्वजा उठाए जाने तक।
डोनाल्ड ट्रंप उस गुप्त इतिहास में उस व्यक्ति के रूप में विद्यमान है जो समस्त वैश्विकतावादियों को उकसाता है, जिनमें विश्व के वैश्विकतावादी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के राइनो सम्मिलित हैं। वो उस भविष्यद्वाणीगत स्वरूप की विशेषताओं को पूरा करता है जो पशु की मूरत से संबद्ध है, क्योंकि वो 7 में से एक होकर 8वें के रूप में राजनीतिक मृत्यु से पुनर्जीवित होता है। वो उस समस्त गुप्त इतिहास में स्थित है और उसके भाग्य में ये ठहराया गया है कि जब सक्रिय निरंकुशता पहले संयुक्त राज्य अमेरिका पर और उसके पश्चात संसार पर लागू की जाएगी, तब वो शासन कर रहा होगा। धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद, जो पृथ्वी के पशु के 2 सींगों में ट्रंप के प्रतिरूप के रूप में है, मक्काबियों के इतिहास में वहां विद्यमान है। संयुक्त राष्ट्र और रूस में अजगर की शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां उस इतिहास में साक्ष्य देती है। पोप पतंत्र 13 लोगों के लुटेरों के रूप में वहां सब कुछ एक साथ बांधने और दर्शन को स्थापित करने के लिए विद्यमान है।
प्रिय पाठक, पतरस आप ही है।
पतरस 144,000 के ध्वजवाहकों में सम्मिलित होने का अभ्यर्थी है। पतरस बीच में अनेक भविष्यवाणी संबंधी रेखाओं के मध्य बिंदु पर खड़ा है और विश्वास के द्वारा परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हुए मसीहे के दर्शन द्वारा संपन्न होने वाले रूपांतरण को प्राप्त कर रहा है। पतरस रूपांतरण के पर्वत पर है जहां उसे मसीह के स्वरूप में परिवर्तित किया जाना है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका पशु की मूरत का निर्माण कर रहा है।
भाइयों, हम में स्वार्थ कम और परमेश्वर अधिक होना चाहिए। वो कलीसिया की शक्तियों पर अपना अधिकार जताता है, परंतु बहुत बड़ी सीमा तक हमारे लोगों की योग्यता अयोग्य वस्तुओं में लगी हुई है। बहुत अधिक समय तुच्छ विचारों और दावों पर लगाया जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम पर्वत पर ऊपर चढ़ें और अधिक प्रत्यक्ष रूप से उसकी उपस्थिति में आएं। हम एक ऐसे संकट में प्रवेश कर रहे हैं जो संसार की उत्पत्ति से लेकर अब तक किसी भी पूर्व समय से अधिक उन प्रत्येक जनों से जिन्होंने मसीह का नाम लिया है पूर्ण समर्पण की मांग करेगा। परमेश्वर का कार्य हम में जो कुछ है उसका सब कुछ मांगता है, परंतु हमारे लोग ये समर्पण कभी नहीं करेंगे जब तक कि उनके हृदय परिवर्तित न हो जाएं। उन्हें उतने ही रूपांतरण की आवश्यकता है जितनी पतरस को थी। जब वे इस प्रकार जीवंत किए जाएंगे तब मसीह उनसे कह सकेगा, अपने भाइयों को स्थिर कर, मेरी भेड़ों की चरवाही कर, मेरे मेमनों की चरवाही कर।
जब दैवी शक्ति मानवीय प्रयास के साथ संयुक्त होती है तब कार्य सूखी ठूंठ में लगी आग के समान फैल जाएगा। परमेश्वर ऐसी साधन शक्तियों का उपयोग करेगा जिनकी उत्पत्ति को मनुष्य समझ न सकेगा। स्वर्गदूत वो कार्य करेंगे जिसे करने का आशीष मनुष्यों को मिल सकता था यदि उन्होंने परमेश्वर की मांगों का उत्तर देने की उपेक्षा न की होती। अब ये कार्य मनुष्य के सामने प्रस्तुत है, क्या वो इसे ग्रहण करेगा? वर्तमान समय में कर्मियों के लिए बहुत से द्वार अनबंद और पूर्णतः खुले हुए हैं, क्या वे इन द्वारों से प्रवेश करेंगे? स्वामी की आज्ञा पर ये कहने के लिए कौन तैयार है, मैं यहाँ हूँ, हे प्रभु मुझे भेज।
मकिदुनियाई पुकार संसार के सब भागों से करुण निवेदनों के रूप में हमारे पास आती है, इधर आकर हमारी सहायता करो। रिव्यू एंड हेरल्ड, December 15, 1885।
हमें पर्वत पर आना है और पतरस के समान परिवर्तित होना है, और जब हम ऐसा करते हैं तब हम यशायाह के समान शुद्ध किए जाएंगे। ये शुद्धिकरण उस समय पूर्ण होता हुआ दर्शाया गया है जब ईश्वरीय सामर्थ्य मानवीय प्रयास के साथ संयुक्त होती है। मकिदुनिया का बुलावा 40वें पद के गुप्त इतिहास में प्रकट होता है।
हमारे नगरों में दृढ़तापूर्वक प्रयास किए जाने का समय आ गया है। लूका 21 पढ़ो। ये इसी समय का संदेश है और ये अंत की इस पीढ़ी के लिए लिखा गया है। हमारे और उस कार्य के बीच जिसे करने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है, किसी भी वस्तु को आड़े नहीं आने देना चाहिए। नगरों में रहने वालों के सम्मुख सत्य प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। दूसरों में दोष निकालने में तनिक भी समय न गवाया जाए। सब प्रकार का विवाद बंद हो जाना चाहिए। हमें भाइयों के समान प्रेम करना है। आओ हम परमेश्वर के साथ पर्वत पर चढ़ें, ताकि हम लौटकर अपने ऊपर परमेश्वर की महिमा का प्रतिबिंब लेकर आएं। वो प्राप्त करने का एकमात्र स्थान परमेश्वर के साथ पर्वत पर ही है। प्रभु के वचन का, जैसा वो उसकी व्यवस्था में प्रकट किया गया है, अध्ययन करने में एक कार्य किया जाना है। बहुत सा अनौपचारिक पठन हुआ है, परंतु वास्तविक अध्ययन कितना हुआ है? मसीह मनुष्यों के बीच रहे और उस व्यवस्था की ठीक ठीक विधियों का संसार में उपदेश किया। धार्मिकता में ये कार्य शीघ्र ही संक्षिप्त कर दिया जाएगा। इसे पूर्णता तक पहुंचाने के लिए हमारे प्रयत्नों में हमें अधिक दृढ़ और अधिक भक्तिपूर्ण होना चाहिए। वो समय आ गया है कि हमें केवल सक्रिय ही नहीं होना है, वरन उस सक्रियता को इस प्रकार केंद्रित करना है कि उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रकट हो। यदि हम परमेश्वर के साथ पर्वत पर अधिक समय बिताते तो हमारा कार्य अधिक प्रभावकारी होता। हमारे प्रचार में और अधिक प्रभावोत्पादक सामर्थ्य अवश्य आनी चाहिए। आत्मा की तलवार को नए सिरे से धारदार किया जाए और सामर्थ्य के साथ आगे भेजा जाए। क्या हम अपने आप को इस कार्य में ऐसे पुरुषों के समान लगाएंगे जिनके सामने अनंतता की समस्त वास्तविकताएं उपस्थित हैं? हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आगे बढ़े और पृथ्वी पर परमेश्वर के कार्य को पूरा करे। ऑस्ट्रेलियन यूनियन कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डर, October 1, 1906।
उसी पर्वत पर जो परम पवित्र स्थान भी है, दिव्यता हमारी मानवता के साथ संयुक्त होती है। और लूक 21 अंतिम पीढ़ी के लिए संदेश है जिसे नगरों को अंतिम चेतावनी देनी है। नगरों के लिए ये चेतावनी का कार्य स्वर्गदूत पूरा करेंगे यदि हम पर्वत पर आने और उसकी प्रतिमा में रूपांतरित होने से इनकार करें। ये कार्य नगरों के लिए है क्योंकि अंतिम पीढ़ी ऐसे काल में जीवित है जब हजारों नगरों का नाश होना है। नगरों के विनाश की भविष्यवाणी संबंधी अवधि नैशविल के अग्निगोले से आरंभ होती है और चेतावनी देने का कार्य वहीं से प्रारंभ होता है, और उस कार्य की पहचान लूक 21 में की गई है। वर्षों के दौरान हम बार बार ये दिखा चुके हैं कि लूक 21 तीसरे हाय के इस्लाम के विषय में एक चेतावनी है।
लूका 21 में यीशु ने उस इतिहास का अनुसरण किया जो प्राचीन इसराइल को परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के रूप में अस्वीकार किए जाने से आरंभ होकर पोपीय उत्पीड़न के अंधकारमय युगों के अंत तक पहुंचता है और फिर उन चिन्हों तक अग्रसर होता है जिन्होंने मिलराइट इतिहास का उद्घाटन किया। मिलराइट इतिहास 144,000 के इतिहास का चित्रण करता है।
और वे तलवार की धार से गिरेंगे और सब जातियों में बंदी बनाकर ले जाए जाएंगे, और यरूशलेम अन्य जातियों के पैरों तले रौंदी जाएगी जब तक कि अन्य जातियों के समय पूरे न हो जाए, और सूर्य में और चंद्रमा में और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे, और पृथ्वी पर जातियों को संकट होगा और वे घबराहट में पड़ेंगी, समुद्र और लहरें गरजेंगी, और पृथ्वी पर आने वाली बातों के भय और प्रतीक्षा के कारण मनुष्यों के हृदय उनके भीतर से बैठ जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिला दी जाएंगी, और तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल में आते देखेंगे। लूका 21:24।
प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में यूहन्ना ये पहचानता है कि पोपीय शासन के 1260 वर्ष भविष्यद्वाणी के अनुसार अन्य जातियों को दिए गए थे, और लूका ये पहचानता है कि उस 70-98 में अन्य जातियों का समय पूरा हुआ, तब मसीह ने सूर्य, चंद्रमा और तारों में उन चिन्हों का उल्लेख किया जो मिलरवादी आंदोलन को चिन्हित करते हैं, और ये कहकर निष्कर्ष किया, जाति जाति पर संकट और घबराहट होगी, समुद्र और लहरें गरजेंगी, और पृथ्वी पर आने वाली बातों के भय और प्रतीक्षा के कारण मनुष्यों के हृदय बैठते जाएंगे। लूका में जातियों पर संकट वही है जो प्रकाशित वाक्य में जातियों का क्रोधित होना है।
और जातियां क्रोधित हुईं, और तेरा प्रकोप आ पहुंचा, और मरे हुओं का वो समय भी आ पहुंचा कि उनका न्याय किया जाए, और तू अपने सेवकों भविष्यद्वक्ताओं को और पवित्र लोगों को और उन्हें जो तेरे नाम का भय मानते हैं, छोटे और बड़े, प्रतिफल दे, और जो पृथ्वी का नाश करते हैं उनका नाश करे। प्रकाशित वाक्य 11:18।
परमेश्वर का क्रोध 7 अंतिम विपत्तियों में प्रकट होता है, और तब आरंभ होता है जब मीखायल उठ खड़ा होता है और मनुष्यों की परीक्षा काल सीमा समाप्त हो जाती है। जातियों का क्रोधित होना एक ऐसी अवधि है जो परीक्षा काल की समाप्ति तक ले जाती है। जातियों का क्रोधित होना 9:11 से आरंभ हुआ जब तीसरे हाय का इस्लाम आ पहुंचा और इस प्रकार पिछली वर्षा के आगमन को चिह्नित किया।
मैंने देखा कि जातियों का क्रोध, परमेश्वर का प्रकोप और मरे हुओं का न्याय करने का समय, ये एक दूसरे से पृथक और भिन्न थे और एक के बाद एक आने वाले थे, और ये भी कि मीखाएल अब तक खड़ा नहीं हुआ था और उस क्लेश का समय जैसा कभी न हुआ था अभी तक आरंभ नहीं हुआ था। जातियां अब क्रोधित हो रही हैं, परंतु जब हमारा महायाजक पवित्र स्थान में अपना कार्य पूरा कर लेगा तब वो उठ खड़ा होगा, पलटा लेने के वस्त्र धारण करेगा और तब अंतिम 7 विपत्तियां उंडेली जाएंगी।
मैंने देखा कि वे 4 स्वर्गदूत चारों पवनों को तब तक रोके रहेंगे जब तक पवित्र स्थान में यीशु का कार्य पूरा ना हो जाए, और उसके बाद अंतिम 7 विपत्तियां आएंगी। अर्ली राइटिंग्स 36।
मिलेराइट इतिहास में राष्ट्रों का क्रोधित होना, अथवा जैसा कि लूका अभिलेख करता है, जातियों की क्लेश इस्लाम के द्वारा पूरा हुआ।
1938 में तुर्की मिस्र के साथ युद्ध में उलझ गया। मिस्रियों के तुर्की सत्ता को उलट देने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही थी। इसे रोकने के लिए यूरोप की 4 महान शक्तियां, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा, तुर्की सरकार को सहारा देने के लिए हस्तक्षेप करने लगीं। उरिया स्मिथ, सिनॉप्सिस ऑफ प्रेजेंट ट्रूथ, 218।
118वीं में तथाकथित पूर्वी प्रश्न राष्ट्रों को हिला रहा था, और पूर्वी प्रश्न इस्लाम था, अर्थात बाइबिल की पूर्वी पवन। मिलेराइट इतिहास में राष्ट्र इस्लाम के द्वारा हिला दिए गए, और तब प्रभु बादलों में होकर परम पवित्र स्थान में आया, इस प्रकार उस समय का प्रतिरूप प्रस्तुत करते हुए जब प्रभु अपने दूसरे आगमन पर बादलों में आएगा। उसके बादलों में आने से पहले इस्लाम राष्ट्रों को संकट में डालता है, और यही वो संदेश है जिसकी घोषणा पतरस को हजारों नगरों के विनाश से पूर्व नगरों के लिए करने को दी गई है। नगरों के विनाश की अवधि नैशविल के अग्निगोलों से आरंभ होती है।
काश परमेश्वर की प्रजा को उन हजारों नगरों के आसन विनाश का कुछ बोध होता जो अब लगभग मूर्ति पूजा के हवाले हो चुके हैं, परंतु जो बहुत से लोग सत्य का प्रचार करने वाले होने चाहिए वे अपने ही भाइयों पर दोषारोपण और निंदा कर रहे हैं। जब परमेश्वर की परिवर्तनकारी सामर्थ्य मनों पर आएगी तब एक निश्चयात्मक परिवर्तन होगा। मनुष्यों में आलोचना करने और गिराने की कोई प्रवृत्ति न रहेगी। वे ऐसी स्थिति में खड़े न होंगे जो ज्योति को संसार पर चमकने से रोकती है। उनकी आलोचना, उनका दोषारोपण समाप्त हो जाएगा। शत्रु की शक्तियां युद्ध के लिए एकत्र हो रही हैं। हमारे सामने कठोर संघर्ष है। निकट आओ मेरे भाइयों और बहनों, निकट आओ, मसीह के साथ बंध जाओ। तुम न कहो सम्मिलन, और न उसके भाई को भाई मानो, और न आतंकित हो। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानो, और वही तुम्हारा भय हो और वही तुम्हारा आतंक हो, और वो पवित्र स्थान ठहरेगा, परंतु इसराइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा, और उनमें से बहुत से ठोकर खाएंगे और गिरेंगे और टूट जाएंगे और फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। संसार एक रंगमंच है, उसके अभिनेता, उसके निवासी अंतिम महान नाटक में अपनी अपनी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर दृष्टि से ओझल कर दिया गया है। मनुष्यता की विशाल जनसमूहों में कोई एकता नहीं है सिवाय इसके कि लोग अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परस्पर संघबद्ध हो जाते हैं। परमेश्वर देख रहा है, अपने विद्रोही प्रजाजनों के संबंध में उसके उद्देश्य पूरे किए जाएंगे। संसार मनुष्यों के हाथों में नहीं सौंपा गया है। यद्यपि परमेश्वर कुछ समय के लिए भ्रम और अव्यवस्था के तत्वों को प्रभुत्व करने की अनुमति दे रहा है,
नीचे से एक शक्ति कार्य कर रही है ताकि इस नाटक के अंतिम महान दृश्य उपस्थित किए जाए। शैतान मसीह के रूप में आता हुआ और उन लोगों में अधर्म की सब प्रकार की छलना के साथ कार्य करता हुआ, जो अपने आप को गुप्त समाजों में एक दूसरे से बांध रहे हैं। जो लोग संघबद्धता के प्रति लालसा के आगे झुक रहे हैं, वे शत्रु की योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं। कारण के पीछे परिणाम अवश्य आएगा। अपराध लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। संसार भ्रम से भर गया है और शीघ्र ही मनुष्यों पर एक बड़ा आतंक आने वाला है। अंत बहुत निकट है। हम जो सत्य को जानते हैं, हमें उस बात के लिए तैयारी करनी चाहिए जो शीघ्र ही प्रबल आश्चर्य के समान संसार पर आ पड़ने वाली है। रिव्यू एंड हेरल्ड, September 10, 1903।
भ्रम और अव्यवस्था के तत्व उस व्यवस्था के फलस्वरूप निर्मित किए जा रहे हैं जिसे सिस्टर व्हाइट उच्च शिक्षा के रूप में चिह्नित करती है और जिसे वो अधर्म का भेद भी कहती है। नैशविल का पार्थेनोन मंदिर उस मिथ्या शिक्षा का प्रतीक है जो अब उस भ्रम और अव्यवस्था को उत्पन्न कर रही है जो कुछ समय तक प्रभुत्व रखती है। नैशविल पर अग्निगोले इस्लाम द्वारा लाए जाते हैं और वे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष पर परमेश्वर के न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब नैशविल पर आघात होता है तब मध्यरात्रि के पुकार के प्रचार की अल्प अवधि आरंभ होती है और वो रविवार के विधान तक ले जाती है जहां यशायाह का दुष्ट गठबंधन अपना अंतिम कदम उठाता है, जबकि संसार को उस एक विश्व सरकार को स्वीकार करने के लिए विवश किया जाता है जिसे प्रकाशित वाक्य 13 में पशु की मूरत के रूप में पहचाना गया है। दुष्ट गठबंधन की यशायाह द्वारा की गई पहचान 144,000 के मुद्रांकन के साथ संगति रखती है।
तुम उन सबके विषय में जिनके विषय में ये प्रजा कहे षड्यंत्र, तुम षड्यंत्र मत कहो, और जिससे वे डरते हैं उससे तुम मत डरो और न भयभीत हो। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानो, वही तुम्हारा भय ठहरे और वही तुम्हारा आतंक हो, तब वो पवित्र स्थान ठहरेगा, परंतु इज़राइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस पहुंचाने वाली चट्टान और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा, और उनमें से बहुत से ठोकर खाएंगे और गिरेंगे और टूट जाएंगे और फंसेंगे और पकड़ लिए जाएंगे।
गवाही को बांध दो और मेरी शिष्य मंडली के बीच व्यवस्था पर मुहर लगा दो, और मैं यहोवा की बाट जोहूंगा जो याकूब के घराने से अपना मुख छिपाए हुए है, और मैं उसी की प्रतीक्षा करूंगा। देखो, मैं और वे बालक जिन्हें यहोवा ने मुझे दिया है इज़राइल में सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सियोन पर्वत पर निवास करता है चिन्हों और अद्भुत कामों के लिए हैं। और जब वे तुमसे कहें कि जिनमें परिचित आत्माएं हैं उनके पास जाओ और उन जादूगरों के पास जो चूं चूं करते और बुदबुदाते हैं, तो क्या किसी प्रजा को अपने परमेश्वर के पास न जाना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मरे हुओं के पास जाया जाए? व्यवस्था और गवाही की ओर यदि वे इस वचन के अनुसार नहीं बोलते तो इसका कारण ये है कि उनमें ज्योति नहीं है। यशाया 8:12-20।
सिस्टर व्हाइट का ये अनुच्छेद संकेत करता है कि भ्रम और अव्यवस्था का एक काल शैतान के मसीह के रूप में आने की ओर ले जाता है। रविवार की व्यवस्था के समय शैतान मसीह का रूप धारण करके प्रकट होता है।
परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए पोप शाही की संस्था को लागू करने वाली आज्ञा के द्वारा हमारा राष्ट्र अपने को धार्मिकता से पूर्णतः विच्छिन्न कर लेगा। जब प्रोटेस्टेंटवाद उस खाई के पार अपना हाथ बढ़ाकर रोमी सामर्थ्य का हाथ थाम लेगा, जब वो उस अथाह गर्त के ऊपर से हाथ बढ़ाकर अध्यात्मवाद के साथ हाथ मिला लेगा, जब इस त्रिविध संघ के प्रभाव के अधीन हमारा देश एक प्रोटेस्टेंट और गणतांत्रिक शासन के रूप में अपने संविधान के प्रत्येक सिद्धांत का परित्याग कर देगा और पोपीय असत्यों तथा भ्रमों के प्रसार के लिए प्रावधान करेगा, तब हम जान सकते हैं कि शैतान की अद्भुत कार्यवाही का समय आ पहुंचा है और अंत निकट है। Testimonies, Volume 5, 451।
भ्रम और अव्यवस्था का समय संडे लॉ से पूर्व आता है। संडे लॉ से ठीक पहले उस अवधि में जिसका प्रतिरूप एक्सेटर कैंप मीटिंग और पिंतेकुस्त से पहले ऊपरी कक्ष में बिताए गए उन 10 दिनों में दिखाई देता है। 144,000 को एकत्र होकर दबकर खड़े होना है। हे मेरे भाइयों और बहनों, मसीह के साथ बंध जाना है। मुद्रांकन संडे लॉ से पहले होता है और उसी इतिहास में वो दुष्ट महासंघ एक विश्व सरकार स्थापित करने के अपने अंतिम कार्य का आरंभ करता है।
मुहरबंदी के समय मसीह धर्मियों के लिए पवित्र स्थान होंगे, परंतु दुष्टों के लिए ठोकर का पत्थर।
वे यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होंगे, जो वे बहुत से हैं जो गिरते हैं, परंतु उन थोड़े लोगों के लिए जो मुहर बंद किए जाते हैं, वही उनका भय होंगे।
परमेश्वर का भय वही था जिसका अभाव हव्वा में था,
और जो लोग वास्तव में परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके पास उस भय से भिन्न प्रकार का भय होता है जो बहुतों पर तब आता है जब वे ठोकर खाते हैं। भय के ये दो प्रकार उन लोगों को चिह्नित करते हैं जो परीक्षा की प्रक्रिया में उत्तीर्ण होते हैं और जो असफल होते हैं। जो उत्तीर्ण होते हैं उन पर मुहर की जाती है, और जो नहीं होते उनका प्रतिनिधित्व संख्या 5 के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वे ठोकर खाएं और गिरे और टूट जाएं और फंस जाएं और पकड़ लिए जाएं। मुहर लगाए जाने का वो समय जिसे रविवार के नियम से पहले घटित होता हुआ दर्शाया गया है, जब भ्रम और अव्यवस्था की एक अवधि होती है, वही समय है जब 10 कुमारियों का दृष्टांत पूरा होता है।
जो बहुतों के ठोकर खाने के विपरीत मुद्रित किए गए थोड़े लोग हैं, वे वही हैं जो यहोवा की प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रकार वे उन बुद्धिमान कुमारियों की पहचान कराते हैं जिन्होंने प्रतीक्षा की। कुमारियों के इन दो वर्गों के भीतर एक पवित्र और एक अपवित्र भविष्यद्वाणी संबंधी प्रतीक्षा भी है, जो भय के दो प्रकारों के अनुरूप है।
जब दूल्हे ने आने में विलंब किया तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। दूल्हे के विलंब करने के द्वारा उस समय के बीत जाने का संकेत दिया गया है जब प्रभु की आशा की गई थी, उस निराशा का और उस प्रत्यक्ष विलंब का। इस अनिश्चितता के समय में सतही और आधे मन के लोगों की रुचि शीघ्र ही डगमगाने लगी और उनके प्रयत्न शिथिल पड़ गए, परंतु जिनका विश्वास बाइबल के व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित था, उनके पैरों के नीचे ऐसी चट्टान थी जिसे निराशा की लहरें बहा नहीं सकती थी। वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। एक वर्ग निश्चिंतता में और अपने विश्वास के परित्याग में, और दूसरा वर्ग धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता हुआ जब तक कि अधिक स्पष्ट ज्योति न दी जाए। तो भी परीक्षा की उस रात में अंतिम वर्ग भी कुछ सीमा तक अपना उत्साह और समर्पण खोता हुआ प्रतीत हुआ। आधे मन के और सतही लोग अब अपने भाइयों के विश्वास पर आश्रित नहीं रह सकते थे। प्रत्येक को अपने लिए स्वयं स्थिर रहना था या गिरना था। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 395।
जो लोग पवित्र रीति से प्रतीक्षा करते हैं, वे चिन्ह और आश्चर्य ठहराए जाने वाले हैं जब रविवार व्यवस्था के समय उन्हें संसार के लिए एक ध्वज के समान ऊंचा उठाया जाएगा। उस समय भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का विषय उस ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है जो उनसे जो परिचित आत्माओं के अधिकारी हैं और उन जादूगरों से जो फुसफुसाते और बड़बड़ाते हैं संबंधित है, और उस ज्ञान का भी जो व्यवस्था और साक्ष्य द्वारा चिन्हित किया गया है। ये वही परीक्षा है जैसी हव्वा और आदम के लिए थी। क्या हम ऐसी शिक्षा को ग्रहण करते हैं जिसमें सत्य त्रुटि के साथ मिश्रित और संयुक्त हो, या हम यहोवा यों कहता है पर दृढ़ खड़े रहते हैं? क्योंकि यदि वे इस वचन के अनुसार नहीं बोलते तो इसका कारण ये है कि उनमें ज्योति नहीं है। सच्ची और झूठी शिक्षा मसीह और शैतान के बीच महान विवाद में सत्य की एक प्रधान रेखा है। नैशविल परमेश्वर के वचन के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक है, जैसे निश्चित रूप से सदोम स्वैराचार का प्रतीक है, और जैसे न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक शक्ति का प्रतीक है, तथा पेंटागन उसकी सैन्य सामर्थ्य का प्रतीक है।
पत्रस नैशविल पर गिरने वाले अग्निगोले की देहलीस पर पानियम और उस पर्वत पर खड़ा है जो मंदिर की परीक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। वो पहचानता है कि जब अग्निगोले गिरेंगे तब लौदीकियाई सेवेंथ डे एडवेंटिज्म को फटकारा जाएगा और लज्जित किया जाएगा, और ये कि नैशविल संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संसार को चेतावनी दी जानी आवश्यक है। इस्लाम का संदेश दूतों की पुष्टि करता है, ठीक वैसे ही जैसे कर्मेल पर गिरी आग ने ये पुष्टि की थी कि एलिया सच्चा भविष्यद्वक्ता था। तथापि नैशविल के लिए चेतावनी केवल तीसरे हाय के इस्लाम की नहीं है, और न ही मात्र इस बात की कि आकस्मिक आक्रमण में किस प्रकार के अस्त्र प्रयुक्त किए जाते हैं। चेतावनी के संदेश को ये चिह्नित करना चाहिए कि इस्लाम को न्याय लाने की अनुमति क्यों दी जा रही है। ऐसा न्याय जो उस काल का आरंभ करता है जिसमें हजारों नगर नष्ट कर दिए जाते हैं। ये पहले से चिह्नित कर देना कि इस्लाम नैशविल पर एक आकस्मिक आक्रमण करेगा, दूतों को प्रमाणित करेगा, पर यदि वो केवल इतना ही करे तो वो एक अपूर्ण चेतावनी होगी।
नैशविल की अग्निगोलाएं परमेश्वर का एक न्याय है जो एक अल्प अवधि का आरंभ करती है, जिसका अंत रविवार व्यवस्था पर होता है, और वो
जैसे इस अवधि के आरंभ में था, वैसे ही परमेश्वर का एक न्याय भी है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पहले ही बता दिया था कि परीक्षा क्या है, और यदि वे उस परीक्षा में असफल हों तो उसके परिणाम क्या होंगे। सिस्टर व्हाइट कारण से परिणाम तक तर्क करने की सामर्थ्य के महत्व की पहचान करती हैं, और बाइबल ये बताती है कि कारण के बिना शाप नहीं आएगा।
जैसे पक्षी भटकता फिरता है और जैसे अबाबील उड़ती फिरती है, वैसे ही अकारण शाप नहीं आता। नीति वचन 26:2।
नैशविल के अग्निगोलक प्रभाव है, और वो शाप भी जो आता है। चेतावनी के संदेश में कारण अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। भविष्यद्वक्ता योना का संदेश केवल 40 दिनों में होने वाले विनाश की पहचान भर नहीं था, वरन उसने राजा से लेकर समस्त प्रजा तक जागृति और सुधार उत्पन्न किया। जो बात प्रकट हुई वो ये थी कि राजा और उसकी प्रजा अपनी दुष्ट चाल चलन से फिर गए। योना ने उन्हें आने वाले विनाश के विषय में बताया था, और ये भी बताया था कि वो उनके दुष्ट और बुरे जीवन व्यवहार के कारण है।
क्योंकि ये बात नीनवे के राजा तक पहुंची,
तब वो अपने सिंहासन पर से उठा और अपना राजवस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख में बैठ गया, और राजा तथा उसके प्रधानों की आज्ञा से नीनवे में ये घोषणा कराई और प्रकाशित की गई कि न मनुष्य, न पशु, न गाय बैल, न भेड़ बकरियां कुछ भी चखें, वे न चरें और न पानी पिए, परंतु मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और परमेश्वर की दोहाई बड़े बल से दें, वरन वे सब अपने अपने बुरे मार्ग से और उस उपद्रव से जो उनके हाथों में है फिरें। योना 3:6-8।
इस्लाम एक तुरही संबंधी शक्ति है, और प्रकाशित वाक्य 8-11 तक की 7 तुरहिया तथा अध्याय 16 भी विशिष्ट भविष्यद्वाणीगत विशेषताएं धारण करते हैं। पहली 4 तुरहिया सन 320 में पहला रविवार विधि पारित करने के कारण साम्राज्यवादी रोम पर आए हुए न्याय थे। अगली 2 तुरहिया सन 500 पदरियट में एक रविवार विधि पारित करने के कारण पोपीय रोम पर आए हुए न्याय थे। प्रकाशित वाक्य 8-11 तक की 7 तुरहियां प्रकाशित वाक्य 16 की 7 अंतिम विपत्तियों का प्रतिरूप है, जो रविवार के प्रवर्तन के कारण मानव जाति पर परमेश्वर का न्याय है।
नैशविल की चेतावनी संदेश को उन पदचिह्नों की पहचान करनी चाहिए जो रविवार व्यवस्था की ओर ले जाते हैं, और भविष्यद्वाणी संबंधी साक्ष्य के आधार पर न्याय उसके पीछे आता है, उससे पहले नहीं। न्याय रविवार प्रवर्तन का परिणाम है। पद 40 के गुप्त इतिहास के वे 5 साक्षी जिन पर हम विचार कर रहे हैं भिन्न भिन्न गवाहियां प्रस्तुत करते हैं, परंतु मानवीय साक्षियों के विपरीत सभी भविष्यद्वाणी रेखाएं एक साथ मिल जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतिम रविवार व्यवस्था के पदचिह्नों की पहचान तब पूरी होती है जब पतरस नैशविल के अग्निगोलों के प्रभाव को समझाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की गवाही को सम्मिलित करता है।
नैशविल की चेतावनी संसार के लिए ये है कि उसी समय बिंदु पर परमेश्वर मनुष्यों और राष्ट्रों पर अपना अंतिम न्याय आरंभ करता है। तब नगरों के विनाश की एक अवधि आरंभ होती है और शीघ्र ही रविवार के कानून तक पहुँचती है, जहां राष्ट्रीय धर्म त्याग के पश्चात राष्ट्रीय विनाश आता है। तब शैतान मसीह का रूप धरकर आता है और दुष्ट महासंघ स्थापित किया जाता है, जब वे 10 राजा उस दर्शन को स्थिर करने वाले 13 लोगों के लुटेरों को अपना राज्य देने पर सहमत होते हैं। नैशविल की चेतावनी उस इतिहास द्वारा निरूपित है जो नैशविल से पहले आता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पशु की एक मूरत बनाने में प्रकट किया गया है। ट्रंप का संदेश वो चेतावनी की तुरही है जो नैशविल के अग्निपिंडों से पहले बजती है।
हम इन बातों को अगले लेख में जारी रखेंगे।